शहर की ओर, जब चले शहर की ओर।
नमस्कार, मैं अंजलि जोशी
और मैं नरेंद्र तिवारी
आप सभी का स्वागत करते हैं
आपके अपने कार्यक्रम में
जिसका नाम है
जब चले शहर की ओर।
दोस्तों, आज कार्यक्रम की 18वीं कड़ी है और आज हम आपको जानकारी देंगे फर्स्ट जॉब यानी पहली नौकरी के बारे में। आप नौकरी प्राप्त करने के लिए किस तरह की तैयारी करें,
लेकिन उससे पहले हमारे सभी दोस्तों को, सभी श्रोताओं को नवरात्रि और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं।
और एक बात और हम आपको बता दें कि कार्यक्रम जब चले शहर की ओर फोर्ड फाउंडेशन और इक्वल एक्सेस के वित्तीय सहयोग से आइडियो सिंह मीडिया कंबाइन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है,
जिसके जरिए हम अपने प्रवासी भाइयों को उनकी जरूरत की जानकारियां उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है या फिर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं।
हमारा नंबर है 9197176782। और अब सुनते हैं धारावाहिक शहर की ओर की अगली कड़ी।
दोस्तों, पिछले अंक में आपने सुना कि उमेश चंद्र को बिना बताए गाजियाबाद चला जाता है। जब कल्पना चंद्र को उमेश के बारे में बताती है तो वो काफी परेशान हो जाता है। कल्पना चंद्र को शाम तक अपने रहने का इंतजाम कहीं और करने के लिए कहती है। चंद्र अपने दोस्त सुंदर के साथ रहने के लिए बात करता है, लेकिन सुंदर बताता है कि उसके साथ पहले से ही काफी लोग रह रहे हैं, इसलिए वो चंद्र को अपने दोस्त गोविंद के पास बदरपुर जाने की सलाह देता है। चंद्र बदरपुर के लिए निकलता है, लेकिन इस बड़े शहर में वो भटक कर कहीं और पहुंच जाता है। और अब सुनते हैं आगे की कहानी।
लकड़ी की काटी काटी में कोड़ा, कोड़े के ढूंढने
ये सूजन कैसे आ गई? मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है।
पिताजी, आप ऐसे क्यों कर रहे हो?
अरे बेटा, क्या बताऊं? तेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई है, सारे पैरों में सूजन आ गई है, अब तो चल भी नहीं सकता।
ये सूजन क्यों आ गई पिताजी?
पता नहीं बेटा, तेरे पिताजी ने तो आज तक कोई बुरा काम भी नहीं किया, फिर पता नहीं भगवान किस बुरे काम की सजा दे रहा है। अच्छा बेटा, अपने पापा का एक काम करेगा?
कौन सा काम पिताजी?
अपनी माँ से कुछ पैसे ले जा और रामू के अड्डे से एक बोतल ले आ।
हे भगवान, अब बस यही दिन बाकी रह गया था मेरी जिंदगी में। शर्म नहीं आती तुम्हें? बच्चे से बोतल के लिए कह रहे हो? अरे जरा देखो अपने आप को, क्या हालत कर लिया है तुमने अपनी। मुझे तो लगता है तुम्हारे पीने की वजह से ही तुम्हारी यह हालत हुई है।
तेरे को पैसे नहीं देने तो मत दे, मगर अपना ये उपदेश अपने पास रख, मुझे मत बता कि मेरी हालत क्यों हुई है। अरे मेरी थोड़ी तबीयत खराब क्या हो गई, मुझे तो तुम लोगों ने अपाहिज समझ लिया, मैं खुद ही चले जाता हूँ अड्डे पर।
ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसी हालत में खड़े होने की कोशिश भी मत कीजिए, लेट रहिए।
तू अपना काम कर, मुझे सलाह देने की कोशिश मत करना।
सात सौ, ये रहे 411 और ये गज्जू। अरे गज्जू
आया साहब।
अरे ये टेबल कुर्सी तो अंदर रख।
अभी रखता हूँ साहब।
ये लड़का शाम से यहाँ बैठा है और इसने कुछ खाया भी नहीं, कुछ परेशान सा लगता है। अभी पूछता हूँ क्या बात है। अरे क्या हुआ भैया, शाम से बैठे हो यहाँ? भैया अब तो ढाबा भी बंद होने वाला है।
जी वो मैं भटक गया था, यहाँ पूछने की कोशिश की तो कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा था, अब बस थोड़ा थक गया हूँ।
दिल्ली में नए हो क्या?
जी जी हाँ, अभी 3-4 दिन ही हुए हैं, नौकरी की तलाश में गढ़वाल से आया हूँ।
अच्छा, उत्तराखंड के हो? अरे भाई मैं भी उत्तराखंड का ही हूँ, लेकिन मैं कुमाऊनी हूँ।
अच्छा
अच्छा, कोई प्रॉब्लम है क्या?
हाँ, वो दरअसल रहने की जगह ढूंढ रहा हूँ, मुझे बदरपुर जाना था लेकिन गलत बस में चढ़ गया, उसने मुझे यहाँ उतार दिया, अब मुझे रास्ता भी नहीं पता।
अच्छा, आप कहाँ जाओगे?
जी
अरे भाई मेरा मतलब है, रात को कहाँ रुकोगे?
जी अभी तो नहीं पता।
नौकरी भी नहीं है, रहने का ठिकाना भी नहीं है, तो तुमने तो कुछ खाया भी नहीं होगा। तुम्हें देखकर मेरी जिंदगी की कहानी याद आ रही है। अच्छा एक काम करो, अभी फिलहाल कुछ खा लो, फिर तुम्हारे रहने का इंतजाम करता हूँ कहीं।
अरे नहीं नहीं, आप मेरी वजह से परेशान मत होइए।
अरे भैया इसमें परेशानी कैसी है? और वैसे भी अगर इस प्रदेश में मैं तुम्हारे काम नहीं आया तो फिर लानत है भाई, हम दोनों एक ही जगह के रहने वाले हैं। अच्छा देखो अभी बस पराठे बचे हैं, हैं? वो मैं लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। और सुनो भैया, इस अनजान शहर में मुझे अपना दोस्त समझो।
जी ठीक है।
चलो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। ये दो और एक ये तीन, तीन पराठे और ये थोड़ा सा अचार भी ले लेता हूँ। पानी की बोतल, पानी कहाँ है?
गज्जू, ये पराठे इस वक्त किसके लिए? और सुन इधर आ।
जी मालिक।
वो कौन है?
जी वो मेरा दोस्त है मालिक, उसी के लिए पराठे ले जा रहा हूँ। आज ही गांव से दिल्ली आया है नौकरी की तलाश में।
नौकरी की तलाश में?
जी मालिक।
देखने में तो सीधा साधा लगता है।
जी मालिक सीधा ही नहीं बल्कि बहुत सीधा है।
अच्छा कैसी नौकरी करेगा वो?
मालिक कोई भी नौकरी चलेगी, कोई भी। अभी तो बस उसे सिर छुपाने के लिए जगह और नौकरी की सख्त जरूरत है मालिक।
ठीक है, इसे कल्लू की जगह किचन में हेल्पर ही पर रख लेते हैं।
ठीक है ठीक है मालिक, ठीक है।
वो नालायक तो ऐसा गाँव गया कि अभी तक लौटा ही नहीं। पर सुन इधर आ।
जी मालिक।
इसे पूछ लेना ये भी कहीं उसी की तरह ना करे।
नहीं 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 मालिक, ये तो बेचारा बहुत शरीफ है, इससे तो आप जैसा कहेंगे वैसा ही कर लेगा।
ठीक है सुबह इसे मुझसे मिलवा देना।
मिलवा दूंगा मालिक। ठीक है बिल्कुल मिलवा दूंगा। बहुत 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 धन्यवाद मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। इसे रात में यहीं हमारे साथ रुकने के लिए कह दूं?
हाँ ठीक है कह देना।
ठीक है मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद मालिक आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
सर मंगल मांगले शिवे सर्वात साधी के शरणे तंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माँ जय भगवती माँ। हे माँ अब तो हम गरीबों का बस तू ही सहारा है, न जाने इस जीवन में और क्या क्या दुख देखने को मिलेंगे।
अरे माँ जी आप ऐसे क्यों कह रही हैं?
अरे ऐसे न कहूँ तो और क्या कहूँ मीरा, जिस घर का बड़ा बेटा निकम्मा हो और छोटा घर से दूर अकेला शहर में नौकरी की तलाश में मारा मारा भटक रहा हो, तो वो माँ ऐसा नहीं कहेगी तो और क्या कहेगी।
माँ जी आप चिंता मत कीजिए सब ठीक हो जाएगा।
क्या ठीक हो जाएगा मीरा, अब देखना नवरात्रों के दिन चल रहे हैं और घर में इतने पैसे नहीं कि माँ की कम से कम पूजा ही ढंग से की जाए। इस बार तो दशहरा हमारा फीका ही मनेगा।
अरे माँ तुम तो खामखा चिंता करती हो, भला हमारा दशहरा फीका कैसे मनेगा? गांव में हर बार की तरह इस बार भी रामलीला हो रही है। मैं तो कहती हूँ बौजी आप भी मेरे साथ रामलीला देखने चलना, और तो और वहाँ उसके बाद प्रसाद भी बटता है।
चुप कर छुटकी, रामलीला देखने जाएगी? अरे अब तो बच्ची नहीं रही, अब तो जवान हो गई है और जवान लड़कियाँ घर से ज्यादा बाहर घूमती अच्छी नहीं लगती। रामलीला देखने जाएगी?
क्या माँ सब जाते हैं, बौजी समझाओ ना माँ को।
माँ जी
देख बुआरी तू इसकी हिमायत मत ले, जितनी ये बड़ी होती जा रही उतने ही इसके पांव बाहर निकल रहे हैं। चल अब जा जा अपनी बौजी के साथ घर के काम में हाथ बटा।
ये रही बनारसी साड़ियां और गरबा की ड्रेसेस भी अलग हो गई, और ये रही सिंथेटिक साड़ियां।
लगता है कविता आज काफी बिजी हो।
हा? अरे राजेश तुम कब आए?
मुझे यहाँ आए तो एक जमाना बीत गया और एक आप हैं कि ध्यान ही नहीं देती।
अरे कुछ नहीं, बस जरा नया स्टॉक आया था उसी को अलग कर रही थी।
ओके ओके ओके। अच्छा सुनो ये लो।
ये क्या है?
तुम खुद ही देख लो ना।
अरे डिप्लोमा इन सेल्स मार्केटिंग।
हाँ मैंने बताया था ना तुम्हें शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में, ये उन्हीं में से एक है।
पर तुम ये?
अरे मैं अपने MBA के बारे में पता करने गया था, वहीं सोचा तुम्हारे लिए भी पता कर लूं। मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छे कोर्सेज के बारे में पता किया।
अच्छा
तो मुझे ये सही लगा, और तो और इसे तुम अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ कर सकती हो।
ओ राजेश थैंक यू सो मच। अच्छा राजेश मेरे लिए इतना सब करने के लिए मेरी तरफ से तुम्हें चौपाटी की पाव भाजी की ट्रीट तो बनती है।
ओके ओके ओके, लेकिन एक छोटी सी शर्त है।
शर्त? कैसी शर्त?
वो क्या है कविता कि हमारी सोसाइटी में नवरात्रों में गरबा का कार्यक्रम रखा गया है, तुम्हें वहाँ मेरे साथ चलना होगा।
लेकिन राजेश मैं, मुझे गरबा नहीं आता।
ये लो, अरे उसमें आने के लिए है ही क्या, हाथ में दो स्टिक पकड़ो और म्यूजिक के साथ शुरू हो जाओ।
लेकिन फिर भी राजेश।
अरे बाबा मैं सिखा दूंगा ना, तो तुम चलोगी ना मेरे साथ?
ठीक है मैं चलूंगी, पर मुझे नाचने वाचने को मत कहना।
चलिए आधी शर्त ही मानी, हमारी खुश नसीबी।
मुंबई में इतने दिनों से हूँ पर कभी गरबा नहीं देखा, सिर्फ इसीलिए मानी है तुम्हारी बात, कुछ उल्टा सीधा मत समझ लेना, समझे ना?
ओके बाबा ओके।
दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर,
और अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट का।
नरेन, हमारे सामुदायिक संवाददाताओं ने हमारे प्रवासी श्रोताओं के कुछ दिलचस्प अनुभव रिकॉर्ड किए हैं। ये तब के अनुभव और किस्से हैं जब वो शहर में नौकरी की तलाश में नए नए आए थे।
तब तो ये जरूर दिलचस्प होंगे, चलो सुनते हैं।
मैं गुड़गांव में काम कर रहा था, एक बार तो क्या हुआ कि मैं दिल्ली जा रहा था, मेरे साथ में एक और था और उनके पास कुछ पैसे थे करीबन 5,000 रुपये, तो हमें सामान लाना था दिल्ली से गुड़गांव के लिए। तो हम जब बस से उतरे तो उतरने के बाद हम शॉप में गए दिल्ली में और हमने सामान परचेज करा, उसके बाद पैसे निकालने की सोची तो पैसे निकल गए, जो हमारी मतलब गाड़ी में जाते समय पैसे निकाल दिए थे किसी ने। तो उस समय वहाँ पर गुड़गांव से जब दिल्ली जाते थे तो काफ़ी डर लगता था हमें।
मेरा नाम विनोद सोयाल, एक बार जो मैं नौकरी करने घूमने के पर्पज से पंजाब गए थे, जब हम स्टेशन पर उतरी हूँ तो जब मैं दिखी वो तो वो सब कुछ पंजाबी में लिखी हूँ, और मैं जो है थोड़ी देर चक्कर में पड़ गया कि भाई अब जाने जाने क्या कहा सब पंजाबी में। अच्छा वो कह के लिए बात करा तो वो पंजाबी में करूँ हैं, लिखूँ देखा कहिए तो वो पंजाबी, इंग्लिश में भी बहुत कम जगह थे। अब मैं अमुक जो है जब सब पंजाबी पंजाबी दिखे वो बड़ू वो है कि अखिल तो मैं जान लगूँ, इंटर पास भी नहीं करता मैंने तबरी तबरी की बात है।
मेरे नाम बालकिशोर जी, कि एक बार मैं दिल्ली गए थे तो दिल्ली जनी बस अड्डा पर गए मैं, वहाँ से मुझे जाना था रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन जाके मैं वहाँ से तमिलनाडु दक्षिण भारत की गाड़ी पकड़नी थी, ट्रेन से तमिलनाडु पहुँचा, वहाँ पे बोली भाषा से भी मैं विदित नहीं था तो थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलनी पड़ रही थी, जो कि मुझे इंग्लिश का मुझे कम ज्ञान था। तो इस प्रकार से जैसे तैसे करके 5-7 दिन मैंने वहाँ पे काटे, कि माहौल वहाँ पे बहुत ही अच्छा था वैसे, लोग बाग अच्छे थे, पर लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बोली भाषा की प्रॉब्लम थी जो कि मैं कवर नहीं करवाया, इसलिए मैं घर आया।
तो नरेन हमने सुना कि हमारे प्रवासी भाइयों का ऐसी स्थिति के बारे में क्या कहना है, और इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं अपने सभी सामुदायिक संवाददाताओं का जिन्होंने उनसे इस बारे में बात की।
और दोस्तों अब वक्त हो चला है विश्वास से भरी कहानियां सुनने का, आइए सुनते हैं हमारे कुछ प्रवासी दोस्तों के पहली नौकरी से जुड़े अनुभव अपने अगले सेगमेंट कुछ विश्वास में।
मैं, मेरा नाम लक्ष्मण सिंह मेहता है, मैं ग्राम मोहतगांव का हूँ और रहने वाला डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, तहसील रानीखेत। तो मैं गांव से जब दिल्ली आया, दिल्ली में आके मुझे कोई काम नहीं मिला, जहाँ भी नौकरी ढूंढता था तो वहाँ क्यों नौकरी नहीं मिलती थी, तो मैं क्या सीखा है क्या काम करोगे करके। फिर मैंने किसी से ड्राइवरी की बात करी तो मैं ड्राइवरी सीखने के लिए मेरठ गया, फिर मेरठ में मैंने 3 महीने की ट्रेनिंग करी, 3 महीने की ट्रेनिंग करके फिर मैं दिल्ली आया, दिल्ली में फिर नौकरी ड्राइवरी ढूंढने लगा, ड्राइवरी ढूंढने लगा तो मालिक लोग मेरे कहते भाई तेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या है, अब मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो कहीं है नहीं, मैंने नौकरी तो किया नहीं था, अब जहाँ भी जाता वो रखते नहीं थे। फिर ढूंढते तो उन्हें किसी ने, एक दोस्त ने बताया, वहाँ उसने काम पर लगाया, वो रोलन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, वहाँ पर मैं ड्राइवर में लग गया, 300 रुपये तनख्वाह में हम लग गए, हमारा हाथ सेट हो गया। तो हाथ सेट होने के बाद फिर हम बहुत दिन तक वहाँ काम करने के बाद फिर हमने वहाँ से काम छोड़ा, फिर दूसरी जगह नौकरी करा, फिर वहाँ पर हमको जो है थोड़ी तनख्वाह और बढ़ के मिली, जहाँ हमने 2 जगह नौकरी करी थी, 3 जगह नौकरी थी, वहाँ से हमने सर्टिफिकेट ले लिया था, उस मालिक ने हमारा इंटरव्यू का अच्छा काम किया था, ईमानदारी से काम किया था, उसने लिख के दे दिया कि वेरी हैड गुड ड्राइविंग, वो सर्टिफिकेट मैं जहाँ भी दिखाता हूँ तो मुझे तुरंत नौकरी मिल जाती थी। फिर हम एक कंपनी में लग गए, उस कंपनी में हमने हमारा इंटरव्यू लिया, वहाँ काम मिला तो वहाँ ठीक है, फंड था, बोनस था, ये सही थी, और 1115 रुपये हमको तनख्वाह मिलने में लग गई। वहाँ तो हम करते 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 हमने वहाँ 14 साल नौकरी करी और बड़ी उत्साह से और अच्छे काम किया उसी का फल मुझे मिल जाते थे, और जो जगह में लोग फेल हो जाते थे लेकिन मैं फेल कहीं होगा नहीं।
अच्छा अंजलि यार, एक बात बताओ कि नौकरी हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए?
नरेन, मेरा मानना है कि नौकरी तभी मिलेगी जब इंटरव्यू अच्छा होगा।
अच्छा, तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए?
नरेन, इसके बारे में मुझे पता तो है, लेकिन अगर भैजी इस बारे में बताए तो वो ज्यादा बेहतर भी होगा और प्रभावशाली भी।
तो ठीक है, बुलाते हैं भैजी को।
मैं हूँ भैया भाई सब, मुझसे करो सवाल, बात हो छोटी बड़ी हो या फिर हल देता हूँ निकाल, बात करता हूँ लाख पते की, पूछो कोई सवाल, क्योंकि मैं हूँ भैजी लाल, मैं हूँ भैजी लाल।
नमस्कार भैजी।
नमस्कार नरेन। नमस्कार अंजलि।
नमस्कार भैजी।
कैसे हैं आप दोनों?
भैजी हम तो बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसे हैं?
बिल्कुल ठीक।
भैजी आज हम आपसे जानने वाले हैं इंटरव्यू के बारे में, किसी भी व्यक्ति को इंटरव्यू देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
भाई नरेन, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मेरा मानना है कि इंटरव्यू देना अपने आप में एक कला है, जो इस कला में जितना निपुण होगा उसको नौकरी उतनी ही जल्दी मिलेगी। और इस कला में सबसे ज्यादा जरूरत होती है कॉन्फिडेंस की, यानी कि आत्मविश्वास की। इंटरव्यू देने से पहले, इंटरव्यू देते समय और इंटरव्यू खत्म करने तक आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। दिमाग में यही होना चाहिए कि इस नौकरी के लिए मुझसे बेहतर कोई और उम्मीदवार नहीं है।
जी भैजी, बिल्कुल ठीक कहा आपने।
क्योंकि इंटरव्यू में सबसे पहले चीज यही देखी जाती है कि सामने वाले व्यक्ति में आत्मविश्वास कितना है, और जब प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्नों का जवाब ज्यादा घुमा फिराकर बिल्कुल न दें। जवाब बिल्कुल सीधा, साधारण और सटीक होना चाहिए। और अगर आपको जवाब नहीं मालूम है तो इधर उधर घुमाने फिराने की बजाय सीधे सीधे स्वीकार कर लें कि आपको जवाब नहीं मालूम है।
लेकिन भैजी, इंटरव्यू की तैयारी करें कैसे?
इसके लिए सबसे पहले इस बारे में सोच विचार करें कि आप किस तरह की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। अब उदाहरण के लिए, अगर आप सेल्स की नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उससे जुड़ी तमाम जानकारियां एकत्र कर लें, अपना बायोडेटा अपने साथ रखें, और इंटरव्यू में साफ सुथरे और सादे कपड़े पहनकर जाएं, सही भाषा का इस्तेमाल करें और बिल्कुल भी देरी से न पहुंचे, ऑन टाइम।
भैजी आपने हमारे श्रोताओं को इंटरव्यू से जुड़े इतने अच्छे अच्छे टिप्स दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय बोला तेरी जय बोला, जय बोला तेरी जय बोला, नौ देवियों की बैणी माता जय बोला, सांगुड़ा की आदि शक्ति जय बोला। जय तेरा नौ का गीत मगोला, जय बोला तेरी जय बोला, जय बोला तेरी जय बोला, नौ देवियों की बैणी माता जय बोला।
Thank you.
वाली देखें दिवाली चैसा जी मुल कांडी मा सैर सपाट अस्तान तिल्या मा बसी पट्टी मा न्यार मा गाड़ का चाल वाली देखें दिवाली चैसा जी मुल कांडी मा सैर सपाट अस्तान तिल्या मा बसी पन देरे तेरा पन चामी को किल क्वारी होला जय बोला जय बोला तेरी जय बोला जय बोला जय बोला तेरी जय बोला नौ देवियों की बैणी माता जय बोला
जय बोला जय बोला तेरी जय बोला सांगुड़ की भुवनेश्वरी जय बोला जय बोला जय बोला तेरी जय बोला मिलकत की भुवनेश्वरी जय बोला जय बोला जय बोला तेरी जय बोला सांगुड़ की भुवनेश्वरी जय
दोस्तों काम की बात में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं नाइट शेल्टर्स यानी रैन बसेरों के बारे में।
दिल्ली जैसे शहरों में रोजाना आप जैसे बहुत सारे भाई काम की तलाश में आते हैं। आप में से कई तो अपने रहने का इंतजाम पहले से ही करके आए होंगे, लेकिन कई ऐसे भी होंगे जिनका इस शहर में रहने का कोई ठिकाना नहीं रहा होगा, और हो सकता है आपको अपने शुरुआती दिनों में मजबूरी में रातें बाहर सड़क पर भी बितानी पड़ी हो।
और सर्दियों में तो ये समस्या और भी बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो रहने का इंतजाम नहीं और उस पर कड़ाके की ठंड।
तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसी स्थिति में आप कहाँ जाएं और कौन आपकी मदद कर सकता है।
दोस्तों दिल्ली नगर निगम और कुछ एनजीओज ने ऐसे 20 नाइट शेल्टर्स तैयार किए हैं। इनमें से 13 दिल्ली नगर निगम द्वारा विभिन्न स्थानों पर चलाए जा रहे हैं, जैसे आजादपुर सब्जी मंडी, पहाड़गंज, झंडेवालान, लाल किला, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, आजाद मार्केट, रोशन आरा रोड, दिल्ली गेट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्केट, निजामुद्दीन, लाहौरी गेट और शहजादा बाग। लेकिन हाँ, इन रैन बसेरों में आप केवल रात के समय ही जा सकते हैं। दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित नाइट शेल्टर्स के संबंध में यदि आप और जानकारी चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम, पहली मंजिल, कम्युनिटी हॉल, कबीर बस्ती, मलकागंज, दिल्ली 110007। फोन नंबर्स हैं 011-23-37-9983 और 011-23-37-0571।
इसके अलावा 7 रैन बसेरों का संचालन एनजीओ एक्शन एड इंडिया द्वारा किया जा रहा है। ये रैन बसेरे गुरुद्वारा शीशगंज, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, राम कुमार मार्ग, तेल मिल गली, रविदास गली और नंद नगरी में गगन थिएटर के पीछे स्थित हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। आश्रय अधिकार अभियान, S-442, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। फोन नंबर है 011-22-48-1609। इन रैन बसेरों में आप किसी भी समय जा सकते हैं।
आपको एक और जरूरी बात बता दें कि ये सभी नाइट शेल्टर्स सिर्फ पुरुषों के लिए हैं। महिलाओं के लिए अभी तक केवल एक ही रैन बसेरा है और वो है अनुग्रह, जो कि बंगला साहिब गुरुद्वारा के पास YWCA परिसर में स्थित है।
दोस्तों अभी तक मुंबई में इस तरह की सुविधाएं नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसी किसी सुविधा के बारे में जानकारी है तो तुरंत हमें बताएं, हम अपने आने वाले एपिसोड में उसे शामिल करेंगे।
और अगर आप इस विषय से जुड़ी और भी कोई जानकारी चाहते हैं या फिर कार्यक्रम के संबंध में आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें 9197176782223 पर SMS कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बारी है हमारे उस सेगमेंट की जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपकी चिट्ठी की।
और आज जो चिट्ठी हम पढ़ने वाले हैं उसे भेजा है मंडावली दिल्ली से किशन राम जी ने। ये लिखते हैं कि मैं जब शुरू में शहर में आया था तो किसी रिश्तेदार के साथ रहता था। उन्होंने ही मुझे नौकरी पर लगवाया था। मैंने 2 महीने नौकरी की और उसके बाद वहां से नौकरी छूट गई। फिर मैं इधर उधर नौकरी की तलाश करने लगा, लेकिन नौकरी नहीं मिली। जिनके साथ मैं रहता था उन्होंने भी मुझे जवाब दे दिया कि बेटा तुम अपना देख लो। मैंने वहां से अपना बैग उठाया और चल दिया। पूरा दिन मैं नौकरी ढूंढता रहा, लेकिन नौकरी नहीं मिली। अब रात भी हो चुकी थी। मैं एक फैक्ट्री में गया और फैक्ट्री के गार्ड को पूरी बात बताई तो उसने कहा, चल चल भाग जा यहाँ से। मैं वहाँ से भी चला गया। फिर एक सुनसान जगह में मैं बैठ गया। डर भी लग रहा था कि कहीं पुलिस ना आ जाए। फिर मैंने उसी जगह पर अपना तौलिया बिछाया और वहीं पर लेट गया। पूरी रात भर मुझे नींद भी नहीं आई, क्योंकि पूरे दिन से मैंने खाना भी नहीं खाया था। फिर सुबह होते ही मैं काम की तलाश करने लगा और एक जगह मुझे काम मिल भी गया। 2-4 महीने मैंने वहाँ पर कैसे भी बिताए। उसके बाद मुझे फिर घर वापस लौटना पड़ा। किशन राम जी, आपकी चिट्ठी पढ़कर पता चला कि प्रवास से जुड़ा आपका अनुभव अच्छा नहीं रहा। हमारी तो बस यही दुआ है कि किसी भी प्रवासी भाई को इस तरह की परेशानी का सामना कभी ना करना पड़े, और यही हमारे कार्यक्रम का मकसद भी है।
और किशन राम जी, आपकी इस चिट्ठी के लिए जब चलें शहर की ओर की तरफ से आपको दिया जाता है एक खूबसूरत सा ट्रैवल बैग। बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, आप भी जीत सकते हैं ये खूबसूरत इनाम, लेकिन इसके लिए प्रवास से जुड़े अपने खट्टे मीठे अनुभवों को चिट्ठियों के जरिए हमें भेजते रहिए। चिट्ठियों के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
इसके अलावा आप हमें अपने अनुभव ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है shaherkior@gmail.com, यानी shaherkior@gmail.com।
और अब समय है संदेशों को सुनने का।
हाँ, मैं संजय बोल रहा हूँ, ग्राम खेतुमासी से, पोस्ट ऑफिस बेदेखाल से, पौड़ी गढ़वाल से। हाँ, अगर मेरे मम्मी पापा मुझे सुन रहे होंगे तो मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि मुझे इसी महीने जॉब लगी है, और मैं अब अगले महीने तक उनको कुछ खर्चा पानी भी भेज दूँगा, और मैं यहाँ पे राजी खुशी के साथ में रह रहा हूँ। मेरी कोई चिंता मत करना, और हो सके तो मुझे मेरे नंबर पर एक कॉल कर देना।
मैं नवीन दिल्ली किदवाई नगर से डुमेला तल्ला अपने चाचा को नमस्ते करता हूँ। चाचा जी, दशहरे दिवाली की ढेर सारी बधाइयाँ आपको और सारे परिवार को शुभकामनाएं।
मीनो सरोजा देवी, मैं मेरे मन को जे मीन उधर ब्याली है, मेरे हम तखिर होना ना, ये भाई जी मेरे फरीदाबाद रहना और गैस एजेंसी में नौकरी कर दूँ। मेरे प्रणाम और नौकरी चाकरी ढंग से करया, अपना प्यार प्रेम से रहा, बोचते गड़बी भाभी बोचते प्यार से स्कूल भेजा, और बल्कि रखे बचुते माँ को चिंता भी ना करे घर में, हम भी फोन से बात करना रहना दो दगड़ी से भी राजी खुशी छी ना, अपने घर में भी हम राजी खुशी छी ना, मेरे बच्चा भी सब ठीक छी ना।
दोस्तों, अगर आप भी अपना कोई संदेश अपने परिवार, रिश्तेदार या फिर दोस्तों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें हमारे फोन नंबर पर SMS कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9197178723।
तो आप सुन रहे थे कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, और अब समय आ गया है आपसे इजाजत लेने का। लेकिन हमें अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभवों के साथ चिट्ठियां जरूर लिखते रहिएगा और ईमेल भी करते रहिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस आप एक बार फिर नोट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है shaherkior@gmail.com, shaherkior@gmail.com।
इसी के साथ हम अपने सहयोगियों हेवलवाणी चंबा और मंदाकिनी की आवाज भणज का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। और जाते जाते एक और जरूरी बात,
हमारे प्रवासी दोस्त मिलजुल कर अपना क्लब तैयार करें और उस क्लब से जुड़ी गतिविधियों के बारे में हमें बताएं। जिस क्लब की गतिविधि सबसे ज्यादा उत्साहजनक होगी उसे हमारे सेगमेंट कुछ विश्वास में शामिल किया जाएगा।
हमारा पता है, कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
तो इसी के साथ इजाजत दीजिए।
नमस्कार।